हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 17। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममरम् प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नाम परा। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यद् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद पहला अध्याय जिसका शीर्षक है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक नंबर 17। सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। अभ्यसेन मनसा शुद्धिम् त्रिवृत्त ब्रह्माक्षरम् परम् मनो यच्चेचित श्वासो ब्रह्म बीजम् अविस्मरन् अभ्यसेन मनसा शुद्धिम् त्रिवृत्त ब्रह्माक्षरम् परम् मनो यच्चेचित श्वासो ब्रह्म बीजम् अविस्मरन् अभ्यसेन मनसा शुद्धिम् त्रिवृत्त ब्रह्माक्षरम् परम् मनो यच्चेचित श्वासो ब्रह्म बीजम् अविस्मरन्। शब्दार्थ अभ्यसेत यानी अभ्यास करना चाहिए, मनसा मन से अभ्यास करना चाहिए। किसका, कैसे मन से? शुद्धिम शुद्ध पवित्र और उसके उपरांत त्रिवृत्त तीन अक्षरों से निर्मित ब्रह्माक्षरम दिव्य जो अक्षर है, परम वो परम है मन, यच्छेत मन को वश में करके, जित श्वास श्वास को नियमित करके, ब्रह्म बीजम अविस्मरण मतलब ब्रह्म जो परम बीज है उसको कभी भी अविस्मरण मत भूलना चाहिए, भूलाना नहीं चाहिए। अनुवाद मनुष्य उपर्युक्त विधि से आसन जमा कर मन को तीन दिव्य अक्षरों अ उ म का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियंत्रित करके मन को वश में करके जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं ओमकार अथवा प्रणव दिव्य अनुभूति का बीज है और यह तीन दिव्य अक्षरों आ उ म से बना है। प्राणायाम के साथ साथ मन द्वारा इसका जप करने की विधि जो ध्यान करने की दिव्य लेकिन यांत्रिक विधि है, महान योगियों के अनुभव द्वारा खोजी गई है और इससे मनुष्य भौतिकता में लिप्त मन को वश में लाने में समर्थ बनता है। मन की आदत को बदलने की यही विधि है। मन को मारना नहीं होता, मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन को व्यस्त रखने के गुण को बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों की धुरी है, अतएव यदि सोचने अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए तो इंद्रियां जो केवल साधन स्वरूप है उनसे किए जाने वाले कर्मों की गुणता भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि जो हमारा मन है ना उसको मारा नहीं जा सकता। मन का तो काम है इच्छा करना और जो भी हमारी इंद्रियां कार्य कर रही होती हैं या ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम जो कुछ वस्तुओं के अंदर लिप्त होते हैं ना तो मन उसी के द्वारा इच्छा कर रहा है। तो मन की आदत को बदलने की क्या विधि है कि अपनी इंद्रियों के द्वारा कोई भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं हो तो मन को उसी, क्योंकि इंद्रियां जो है अभी क्योंकि शब्द ध्वनि हो रही है ना, मुख से ओंकार का उच्चारण हो रहा है, कर्णों से उसी को श्रवण किया जा रहा है, तो इससे मन की इच्छा को परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि मन को किस तरह से व्यस्त करना है। मन उस ध्वनि को श्रवण कर रहा है, जैसे यहाँ पर बताया मन या इच्छा करने को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन को व्यस्त रखने के गुण को बदला जा सकता है। वैसे मन भौतिक कार्य में व्यस्त होता है तो भौतिक इच्छाएं करता है, लेकिन जब मन सक्रिय इंद्रियों की दूरी है, यानी इंद्रियां जो कार्य करती हैं, मन उसी में से किसी एक में लग जाता है। अतएव यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए, अब वो कार्य भौतिक छोड़ के यहाँ जंगल में आकर एकांत स्थान में प्रणव या जो ब्रह्म अक्षर का जप कर रहा है, तो इंद्रियां जो केवल साधन स्वरूप है, इंद्रियों के अंदर कोई इच्छा नहीं होती है, इच्छा मन के अंदर होती है, और इंद्रियां जो है वो बस साधन है मन के अंदर इच्छा पैदा करने की। इससे उनसे किए जाने वाले कर्मों की गुणता भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाती है। ओंकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये जो ओंकार है ना, जैसे हम बोलते हैं योगी जन इन शब्दों के ऊपर अपने ध्यान को एकत्रित करते हैं, तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ओंकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और मन को, अगर मन और इंद्रियों को यदि वांछित परिवर्तन लाना है तो उसका एक ही तरीका है दिव्य ध्वनि। जब तक दिव्य ध्वनि के अंदर मन और इंद्रियां केंद्रित नहीं हो जाती हैं, तब तक उनको कभी भी वश में नहीं किया जा सकता। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। अगर कोई पागल भी हो जाए ना, लेकिन शब्दों के अंदर इतना पावर है, इतना चमत्कार है कि केवल शब्दों से उसको निरोग बनाया जा सकता है। आगे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता में प्रणव यानी ओंकार को परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। भगवान बताते हैं कि सब शब्दों में ओंकार हूँ, तो यहाँ ओंकार जो है या ओम जो बोलते हैं वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। जो व्यक्ति उपर्युक्त विधि से भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता है, वह प्रणव यानी ओंकार का जप आसानी से कर सकता है। अभी उपर्युक्त मतलब कि वैसे तो भगवान का साकार स्वरूप है, उसके साथ प्रेम का संबंध जोड़ना ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे हाईएस्ट भगवान की भक्ति जो है वो सबसे हाईएस्ट स्तर पर है। लेकिन जो नहीं कर पाता है, तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी उसके विषय में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उपर्युक्त विधि से भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता, वह प्रणव का जप आसानी से कर सकता है। यह ओंकार एक संबोधन है, यथा हे भगवान, जिस प्रकार की ओम हरि ओम का अर्थ है हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, उसी तरह ओंकार भी है, किंतु जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण यथा नव दीक्षित भगवान के दिव्य साकार रूप या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन में प्रणव यानी ओंकार का बारंबार उच्चारण करके आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। हमारी वैदिक प्रणाली है कि जिस जीव के हृदय में जिस तरह का, मतलब वो जिस स्टेज पर होता है, जैसी उसकी इच्छा होती है, जैसा उसका आकर्षण होता है, उसको वैसा ही भगवान के पास पहुंचने का वही विधि बताई जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के साकार स्वरूप के ऊपर आकर्षण नहीं होता उनका, वो भगवान के निराकार स्वरूप के अंदर ही बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो उनको नकारा नहीं गया है। जैसे कुछ दूसरे मजहब होते हैं जिनमें क्या होता है कि या तो आप इस तरह से करो या तो आप नरक में जाओगे, दूसरा कोई उसके पास अल्टरनेट नहीं है, उसके पास और कुछ भी नहीं है, कोई और साधन नहीं है। या तो आपको भक्ति की ये विधि निभानी है, मतलब भगवान के पास जाना है, तो बस आपको यही एक विधि है, इसके अतिरिक्त आपके पास और कोई चांस नहीं है, कोई और आपके पास है ना कोई दूसरा तरीका नहीं है, बस एक ही तरीका है, वरना नरक में जाओगे। लेकिन ये वैदिक हमारी जो वैदिक सभ्यता है उसमें आप जैसे भी चाहो, आप जिस स्टेज पे हो, यदि आप भगवान के साकार स्वरूप के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ सकते हो तो ठीक है, आप आष्टांग योग के द्वारा भगवान के साथ संबंध जोड़ो। लेकिन यदि आप भगवान के स्टेज तक नहीं पहुंचे हो तो देवी देवताओं के द्वारा सुकृति एकत्रित करो, स्वर्ग में स्वर्ग का आनंद भोगो, उसके बाद आप ना ऐसी जगह पर वापस आओ, हो सकता है वहां पर आपको ज्यादा फैसिलिटीज होंगे, वहां पर आपको शास्त्र और वो सब प्राप्त होंगे सुकृति के कारण। भगवान कहते हैं फिर जो सुकृति इस तरह से देवताओं की पूजा करके जिसको सुकृति प्राप्त हो जाती है, फिर चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासु रथार्थ ज्ञानी च भरतर्षभा। हर कोई आर्त भगवान के पास नहीं जाता है ना, हर कोई अर्थार्थी धन चाहने वाला भगवान के पास नहीं जाता, वो तो बहुत ज्यादा सुकृति कर चुका। सुकृति मतलब जिसने पिछले जन्म में भगवान की भक्ति ना की हो भले, लेकिन सूर्य को अर्घ दिया हो या किसी कोई सोशल वर्क किया हो, किसी मंदिर में है ना पानी का टैंक लगवाया हो, या किसी ब्राह्मण को खाना खिला दिया हो, या फिर किसी वैष्णव या कभी मंदिर में भगवान के दर्शन कर दिए, या कुछ ऐसा सुकृति जब एकत्रित हुई ना तो उसको चांस मिला दोबारा से। लेकिन इस हमारे इस वैदिक सभ्यता के अतिरिक्त दूसरा और कहीं भी ऐसा नहीं है, सेकंड चांस नहीं मिलता जीव को। वहां पर यही बताया जाता है कि या तो आप ऐसा करो या तो आपके पास दूसरा कोई तरीका नहीं है, आप नरक में जाओगे, बस इनके पास और कुछ। और लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें साफ बता रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण यथा नव दीक्षित भगवान के दिव्य स्वरूप दिव्य साकार स्वरूप का या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होता है, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन को प्रणव यानी ओंकार का बारंबार उच्चारण करके आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, भगवान के दिव्य नाम रूप गुणों लीलाओं इत्यादि को वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा समझ पाना असंभव है, अतएव यह आवश्यक है कि समस्त विषयों के केंद्र बिंदु मन के माध्यम से ऐसी दिव्य अनुभूति को गति प्रदान की जाए। भक्तगण अपने मन को सीधे ही परम सत्य के व्यक्तित्व पर स्थित कर लेते हैं, किंतु जो लोग परम के ऐसे साकार स्वरूप को समझ नहीं सकते, उन्हें निर्विशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्रगति करने के लिए अनुशासित किया जाता है। तो भक्तों के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि मन हम सब साकार है ना, मतलब हम सब का स्वरूप है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, क्लेशोधिक तरस्तेषां अव्यक्ता सत्तचेतसां अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवत् विरवाप्स्यते। क्योंकि हम सब साकार हैं तो देहवत् देह होने के कारण देह के अंदर आकर्षण बहुत आसानी से हो जाता है। इसे भगवान के साकार स्वरूप में भक्तगण अपना मन लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से, और फिर भगवान भी अपने भक्त को बहुत अचरेण आदि गच्छति, भगवान स्वयं उसके साथ वैसे ही प्रकार से उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ये यथामाम प्रपत्यन्ते तांस्तथैव बचाम्यम। अब भगवान को कोई निराकार समझता है तो फिर भगवान उसके लिए निराकार हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जो भगवान को साकार समझते हैं, अपना मित्र, अपना बंधु, अपना पुत्र या अपना सखा समझकर उसके साथ प्रेम करते हैं, तो उनको बहुत सरलता से भगवान कहते हैं, अनन्य चेताः सततम् यो मा स्मरति नित्यशः तस्याहम् सुलभः पार्थ। उसके लिए तो मैं बहुत आसानी से उसको प्राप्त हो जाता हूँ। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर रीति से समझाया इस श्लोक को। श्री प्रभुपाद की जय। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जब उन्होंने पूछा, म्रियमाणस्य सर्वदा, जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। वैसे तो उन्होंने बता दिया, एक जीव को पूरा जीवन भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, यही एकमात्र विधि बताई है कि और कोई कार्य करने का ही नहीं है। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम उकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। सारे जितने बड़े बड़े योगी जन हैं, जो महान अधिकारी, उन्होंने बता दिया कि जीव की मुक्ति यदि हो सकती है तो केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन और भगवान की कथाओं को श्रवण करने से। लेकिन क्योंकि जिस सभा में परीक्षित महाराज को ये श्रीमद्भागवतम का उनके विषय में बताया जा रहा था, वहां पर हजारों ऋषि मुनि एकत्रित थे। अब सारे प्रकार के लोग वहां पर थे, तो सभा में बहुत प्रकार के लोग ऐसे थे। कुछ लोग भक्त, उनकी रुचि जो थी वो भगवान के साकार स्वरूप में थी, लेकिन कुछ ऐसे थे जो ज्ञान योगी थे, जो भगवान के निराकार स्वरूप में ही रुचि रखते थे। तो अगर उनको सिर्फ यही दिया जाता कि सुखदेव गोस्वामी बस यही बताते कि और कुछ नहीं है, बस आपको खाली क्या करना है, भगवान की पवित्र लीलाओं को श्रवण करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, अगर इतना ही वो बताते ना, तो क्या होता, वो इतनी देर बैठते ही नहीं, पूरा भागवतम श्रवण करते नहीं, दसवे स्कंद तक रुकते ही नहीं। और सुखदेव गोस्वामी की ये इच्छा थी कि इन सबको, यानी कि एक वक्ता के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि प्रत्येक जितने भी श्रोतागण हैं उनको उस वो उनके अनुसार, उनकी बुद्धि के अनुसार वो वस्तु प्रोवाइड करे जिससे वो कथा में आकर्षण को बनाए रख सके, है ना। सुखदेव गोस्वामी की इच्छा थी कि सब दसवें स्कंद में भगवान की लीलाओं को श्रवण करें, और जब भगवान की लीलाओं के अंदर श्रवण करेंगे, भगवान की पवित्र लीलाओं का श्रवण हो और हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। लेकिन वहां तक टिकाए रखने के लिए वो अष्टांग योग का वर्णन कर रहे हैं, ताकि उनको लगे कि हमारी रुचि के अनुसार भी यहाँ पर हमें शिक्षा मिल रही है। तो अब जब वो भगवान की पवित्र कथाओं को श्रवण करेंगे, फिर ये सब योग ध्यान वो सब भूल जाएंगे, केवल प्रेम ही प्रेम रह जाएगा। लेकिन इस श्रीमद् भागवतम में संपूर्ण शिक्षा दी गई है, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया है उसी तरीके से, भले ही जिसको जिसके अंदर भगवान के साकार स्वरूप का भले ही इतना ज्यादा प्रेम नहीं है, अभी वो निराकार की ओर आकर्षित है, लेकिन उसको मरने के टाइम पर क्या करना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान भगवान के नाम के अंदर लगाना चाहिए, है ना। इतना ऐसे बताया। अब देखो अष्टांग योग जो होता है इसमें बताया जा रहा है म्रियमाणस्य सर्वदा, जो मरने वाले होते हैं। मरने का क्या मतलब है? मरने का ये मतलब नहीं है कि उसकी समाप्ति हो जाएगी। पहले तो हमारे शास्त्र में ये बताता है कि मरने का मतलब होता है आत्मा को किसी दूसरे शरीर में ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे हम घर छोड़ते हैं ना, एक घर से दूसरे घर में जब हम ट्रांसफर होते हैं तो फिर क्या करते हैं, उस घर के अनुरूप जो भी रास्ते में हम सामान लेके जा सकते हैं वो सामान को अलग से पैक करते हैं कि भाई ये सामान मैं उस घर में लेके जा सकती हूँ और बाकी जो सामान नहीं लेके जा सकते वो वहीं पर छोड़ देते हैं। अब मरने के टाइम पर हमें शरीर छोड़ना है और प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, ना कफन में जेब है ना चिता में अलमारी, है ना। हम जो वस्त्र पहन के जाते हैं उसके अंदर कोई पॉकेट नहीं है और ना ही जिस चिता पर हमें लिटाया जाता है उसमें कोई अलमारी है जिसमें हम अपना धन दौलत रख सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि मृत्यु का देवता रिश्वत भी नहीं लेता। ऐसा भी नहीं है कि हम उसे रिश्वत दे दें कि अभी जी नहीं भरा भोग भोगते भोगते कुछ समय और दे दो। तो इसका अर्थ ये है कि जो कुछ अब तक कमाया है वो तो साथ चलने वाला नहीं, अब तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अब मरना तो है ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि मरने से बच जाएंगे, इसलिए कंप्लीट तैयारी बताई शास्त्रों में। पहले तो बता दिया सुखदेव गोस्वामी ने कि आगते गत साध्वसा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही मृत्यु के विषय में पता चल जाए आप भयभीत मत होना, बल्कि तैयारी करो, मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु तो बहुत ही शुभ वस्तु है अगर देखा जाए, ये मृत्यु ही तो है जो तुम्हें भगवान से मिलाने वाली है, तो उसका स्वागत कैसे करना है। सबसे पहले क्या बताया, छिंद्याद संग शस्त्रेण स्त्रीहाम देहिनो ये चतम, छिंद्याद सारे जितने भी संग हैं जिनसे प्रेम करते हो असंग शस्त्र के साथ वो सारी आसक्ति को काट देना है। और स्त्रीहाम यानी अब समझ जाना है कि इस देह के द्वारा कोई सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। ये देह आज तक तो मुझे आनंद नहीं दे पाई, मैंने कोशिश की बहुत इस देह के द्वारा सुखी होने की, लेकिन ये देह ही मेरे कष्टों का मूल कारण बनी और आज ये देह साथ छोड़ने वाली है। उससे पहले मैं इस देह के प्रति जो मेरा आकर्षण है वो समाप्त करूं। पहले देह से आसक्ति खत्म, फिर देहिनो ये चतम, जितने भी देह के साथ रिलेशन है वो सारे रिलेशंस को तोड़ देना चाहिए, किसी के साथ कोई संबंध नहीं रह जाना चाहिए। अगर किसी के अंदर थोड़ा भी प्रेम रह गया तो मृत्यु सक्सेस नहीं होगी। तो इसलिए अपनी मृत्यु को यदि सक्सेस करना है तो सबसे पहले यहाँ पर अष्टांग योग में बताया जाता है। अभी अष्टांग योग में 9 अंग होते हैं, उनके विषय में धीरे धीरे सुखदेव गोस्वामी चर्चा करते हैं। 9 अंग कौन से होते हैं? पहला है यम। यम का मतलब होता है ये कार्य नहीं करने हैं, निषेध, निषेध मतलब यम। उसके बाद है नियम, नियम का मतलब होता है ये कार्य करने हैं। और उसके बाद है आसन यानी इस तरह से बैठना है, प्राणायाम यानी अपनी श्वासों की क्रिया को कैसे रोकना है, प्रत्याहार धारणा समाधि उद्धान, ये 8 अंग होते हैं। तो इनके विषय में धीरे धीरे हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला यम, यम का मतलब है ये कार्य नहीं करने, कौन कौन से, असंग शस्त्रेण स्प्रिहाम देहेनु ये छतम, अपने शरीर के साथ कोई प्रेम नहीं रखना है और शरीर से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ कोई। वास्तव में हम जो यम का पालन कर रहे हैं ना, वो तो बहुत नीचे की चार यम है ना हमारे पास। कि श्रील प्रभुपाद जी जब भी कोई कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो उनको चार यम का आदेश देते हैं कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो इंटॉक्सिकेशन, है ना। शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, परिस्थिति संग नहीं करना, मांसाहार नहीं करना। ये तो बहुत नीचे की बात है। अभी जिस स्थिति पर योगी है वो बहुत हाईएस्ट है। अभी वो तो सिर्फ जीव को मनुष्य बनाने के लिए है। ये जो चार यम है कि ये चार कार्य नहीं करने हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने कहा, स्वामी जी क्या हम भगवान को देख सकते हैं? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, परंतु पहले आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। वो परेशान हो गया, मनुष्य बनना पड़ेगा, मैं तो मनुष्य हूँ। बोला, मनुष्य ऐसे नहीं होते हैं कि जो दिल का है खा लो, जो जिधर दिल चाहे मुंह मार के आओ, जो दिल करे जिसके साथ संभोग करो, जो भी करो, ये से नहीं। मनुष्य बनने के लिए चार यम है, चार चीजें नहीं करनी है। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। जब ये चार चीजें आप नहीं करते हो उसके बाद मनुष्य बनते हो। इसे वो तो जानवरों की जानवर होते हैं जिनके जीवन में कोई चीज निश्चित नहीं, जो उनकी मर्जी होती है वो करते रहते हैं। लेकिन मनुष्य बनने के लिए कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें नहीं करने होते हैं। तो बोला, अगर हम ये चार चीजें करना शुरू हो जाएंगे फिर भगवान दिखेंगे। श्री प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, अभी तो सिर्फ मनुष्य बने हो, उसके बाद भक्त बनना पड़ेगा, भगवान के पवित्र नाम का जप करना पड़ेगा, 16 माला जप करना पड़ेगा और हृदय में भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़कर भगवान की भक्ति करनी होगी, उसके बाद आप भगवान के दर्शन कर सकते हो। तो ये तो बहुत ही आगे की स्टेज बता रहे हैं। ये शुरू में तो ये छोटी छोटी चीजें हमें बताई जाती हैं। आगे चिंदा द संग शास्त्रेण स्प्रिहाम देहिनु चत ये चतम, अपने शरीर के साथ भी आसक्ति नहीं रखनी है और शरीर के जो ऑफिशियल हमारे रिलेशन है पत्नी और पुत्र उसके अंदर भी नहीं रखनी। वैसे तो इलिसिट सेक्स तो बहुत पुराना हो गया, बहुत पीछे की बात हो गई। अभी हमारे जो वास्तविक संबंधी हैं तथाकथित इस भौतिक जगत में, उन्हें भी छोड़कर आगे निकलना है। और ये हो गया यम। और नियम क्या है? गृहात् प्रवर्जितो धीरा पुण्य तीर्थ जलाप्लुता, किसी ऐसे स्थान में जो भगवान का तीर्थ स्थान हो। जैसे यहाँ पर पुण्य तीर्थ गंगा जी को कहा गया कि गंगा जी में, हरिद्वार में या यमुना नदी में या वृंदावन में जाकर उस जल के साथ, उस पवित्र जल के साथ स्नान करना है। जलाप्लुता मतलब कंटिन्यूस भीगे रहना है अपने आप को, बस भगवान के इस पवित्र जल, अपनी पवित्र इस पवित्र रज में अपने आप को समर्पित कर देना है। ये नियम बताया। ये किसके लिए है? ये भगवत प्राप्ति, अंत समय में भगवत प्राप्ति के लिए पहला यम है, किसी के अंदर कोई मोह नहीं, और दूसरा भगवान की पवित्र स्थल है जो तीर्थ स्थान है, वहां पर जाकर रहना चाहिए। शुचो विविक्त आसीनो, यम नियम के बाद है आसन। आसन कैसा होगा? विधिवत कल्पितासन है। विधिवत एक विधि होती आसन की। हम जब भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो ऐसे ही नहीं कि किधर भी बैठ के जप कर लिया, नहीं, एक आसन। आसन बहुत महत्वपूर्ण है और ये अष्टांग योग में जो आसन है उसको तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाता है, विधिवत कि किस तरह से बनाना है। तो कैसे बनाते हैं? उसमें सबसे पहले नंबर पे कुश रखा जाता है। कुश बहुत पवित्र होता है, भगवान वराह के रोम कुप जो है वो कुश है, तो उनको पहले बिछाया जाता है। उसके ऊपर मृग चर्म बिछाई जाती है, हिरण की चर्म, और उसके ऊपर वस्त्र, नरम वस्त्र जो है वो बिछाया जाता है। ये सब क्यों बिछाया जाता है? क्योंकि ये नियम इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ इनकी जो इनके अंदर से जो गंध निकलती है तो उसके कारण योगी जो होता है वो सुरक्षित रहता है, सर्प बिच्छू इसके करीब नहीं आते हैं और वो आनंद से ध्यान लगा सकता है। वरना ऐसा हो कि वो अभी बैठे और अभी कोई, क्योंकि वो एकांत स्थान में गया है और कोई भी सर्प या बिच्छू उसको डंक मार दे और वो चीखने चिल्लाने शुरू हो जाए तो क्या ध्यान करेगा। इसलिए ऐसा आसन विधिवत कल्पितासन है, विधिवत। और भगवदगीता में तो भगवान ने बताया ना ज्यादा ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए। और जप करते वक्त आसन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम लोग अगर बहुत ही कोई कंफर्ट आसन होगा, बहुत ही नरम गद्दे के ऊपर बैठकर आसानी से आनंद से बैठकर जप करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, हम थोड़ी देर में सो जाएंगे तो क्या जप करेंगे। तो जप करने के टाइम पर सुखासन बताया जाता है, सुख आसन से हमें सीधा बैठना चाहिए और इतना मतलब ऐसा आसन हो जिसमें आप इतना ज्यादा कंफर्ट भी नहीं हो और इतना डिस्टर्ब भी नहीं हो, नॉर्मल आसन हो। और सुखासन में बैठकर ध्यान से भगवान का नाम जप करना चाहिए ताकि जो भगवान के नाम के अंदर हमारी रुचि लगे, ऐसा मतलब ज्यादा आलसी टाइप का आसन नहीं होना चाहिए। यम नियम आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है श्वास की क्रिया। तो अब क्या करना है उसके बाद, प्राणायाम विषय में इधर बता रहे हैं आज के श्लोक में, अभ्यसेन मनसा शुद्धिम। अब अभ्यास करना चाहिए मन के साथ शुद्धि के लिए, और मन की शुद्धि जो है वो केवल और केवल मंत्र से हो सकती है। इसलिए यहाँ पर मंत्र के विषय में बताया त्रिविद ब्रह्माक्षरम परम। त्रिविद, त्रिविद मतलब तीन अक्षरों से युक्त जो ब्रह्म अक्षर है। तीन अक्षर कौन से हैं, अ उ और म। ओम ऐसे जो उच्चारण करा जाता है इसको त्रिविद ब्रह्माक्षर कहते हैं। ये वास्तव में साक्षात ब्रह्माक्षर है और ओम के करोड़ों अर्थ होते हैं। ये ओम जो है वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो इस त्रिविद ब्रह्माक्षरम परम, इस परम ओंकार का जप करने का अभ्यास करना। अभ्यसेन मनसा शुद्धिम, इस तरह से जब ओंकार का अभ्यास करते जाएंगे तो हृदय पवित्र होता जाएगा। इसलिए जो योगी जन है वो इसी ओम का उच्चारण करते रहते हैं इस तरह। परंतु भक्तों ये क्रिया बहुत कठिन है, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि क्योंकि वो डायरेक्ट से भगवान के नाम गुण को लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनको अष्टांग योग करना पड़ता है। और ये ओम ही जो ओंकार त्रिविद ब्रह्माक्षरम जो है, इसी ओम को एक्सपेंशन करके, उसी ओम को विस्तार करके चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के जीवों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र में, महामंत्र के विषय में बताया। चैतन्य महाप्रभु ने इस हरे कृष्ण महामंत्र को इन्वेंट नहीं किया, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो प्राकृतिक नहीं है, वो तो गौलोक से आया है। गौलोक एर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। और वो क्यों, क्योंकि कलयुग के लोग ये अष्टांग योग का अभ्यास करने में कभी समर्थ हो ही नहीं सकते। हृदय इतना मन इतना मलिन है कि इस तरह से मन को टिकाया नहीं जा सकता निराकार स्वरूप में। और भगवान ने स्वयं कहा कि क्लेशो दिक्कत रस्ते श्याम, कि इस अभ्यास में बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत सरल करके हम जैसे लोगों के लिए कि आसानी से भगवान के अंदर मन लगेगा, क्योंकि भगवान का स्वरूप होगा सामने और भगवान के साथ प्रेम होगा तो भगवान के नाम को जप करना बहुत आसान होगा। यही ओंकार जो है उसी का विस्तार जो है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि ये सब क्या है, यम नियम आसन धारणा ध्यान समाधि, आखिर में समाधि में क्या है, भगवान के अंदर समाधि में भगवान के अंदर अपने मन को स्थित करना है। और जो भगवान का भक्त होता है उसका मन और उसकी इंद्रियां सदैव भगवान के अंदर स्थित होती हैं। तो वो डायरेक्ट से है, अभी ये जो अष्टांग योग की विधि है ना, वो सीढ़ी की तरह है, एक एक स्टेप पार करके 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 अंत में ध्यान में जाएगा। लेकिन जो भगवान के प्रेम और भक्ति की विधि है वो लिफ्ट की तरह है, डायरेक्ट से भगवान, बस उधर बैठो, प्रेम करो भगवान के साथ, बटन दबा और भगवान के साथ ध्यान लग जाता है। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है जो कि है ना, शुद्ध भक्त आचार्यों और चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा के अनुसार हमें दिया गया है। इसी का इसमें भी यही बताया जाएगा आगे जाके कि हृदय में भगवान के नाम का जप करके भगवान के अंदर अपने मन को, ध्यान को केंद्रित करना है। और उससे अभी यहाँ पर क्योंकि प्राणायाम के विषय में बताया जाता है तो बता रहे हैं, मनो यच्छेत जित श्वासो, मनो यच्छेत मन को वश में करना है, जित श्वासो श्वास को जीतना है। कैसे जीतना है? अभी इसमें प्राणायाम में कुछ श्वासों की क्रिया होती है, उसमें क्या किया जाता है, पूरक, कुंभक और रीचक, इस तरह से। पूरक में क्या है, धीरे 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 श्वास को अंदर लिया जाता है, और कुंभक में, कुंभ मना घड़ा, और कुंभक में क्या किया जाता है, श्वास को अंदर रोका जाता है, पेट के अंदर श्वास को रोका जाता है। और रीचक का मतलब होता है खाली करना, और फिर उसके बाद थोड़ी देर तक सांस को रोका जाता है, उसके बाद धीरे 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 सांस को निकाला जाता है, यानी खाली किया जाता है। तो इस तरह से जो श्वास को प्रत्याहार करता है, इसको बोलते हैं यच्छे जित श्वासो, श्वासों को इस तरह से जीतता है। और ब्रह्मा बीज बीजम अविस्मरम, ब्रह्म बीजम यानी भगवान के पवित्र नाम का इस तरह से नियंत्रित करके मन को वश में करना, और उसमें दिव्य बीज को कभी अविस्मरण यानी कभी भी नहीं भूलना है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए ये सारी क्रिया है। ये जो अभी तक क्रिया कही जा रही थी, पहले एक एकांत स्थान में जाना, फिर वहां पर एक विधिवत आसन को बनाना, उसके बाद मन को वश में करना, उसके बाद श्वासों को वश में करना, वो पहुंचना कहाँ है, ब्रह्म बीजम अविस्मरण, भगवान के नाम को नहीं बोलना है। यानी इसमें इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को कभी भी भगवान के नाम का विस्मरण नहीं करना है, किसी भी समय मृत्यु संभव है, हमेशा नाम जप अवश्य होना चाहिए, एक क्षण भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाम जप विस्मरण हो जाए। विस्मर्तव्य न जातुचित, स्मरतव्यम सततम विष्णु, यानी ये जितने भी विधि और निषेध हैं, सर्व विधि निषेधासु एव एतयो एव चिन किंकर, जितने भी विधि और निषेध हैं उन सब का किंग, वो ये जो दो, ये दो कार्य हैं कौन से, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, सदैव भगवान को याद करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, और विस्मर्तव्यो न जातुचित, और उसे कभी भी नहीं भूलना है। जितने भी विधि निषेध हैं वो इन दो नियमों के किंकर हैं, यानी बाकी सारे जितने भी नियम किए जाते हैं वो सिर्फ इसलिए कि हम कंटिन्यूस भगवान के पवित्र नाम का जप करें। तो सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है, भगवान का नाम जप, हमें सदैव नाम जप करना है। और इस कलयुग में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम, जो कि कलयुग के लोगों के लिए, क्योंकि हम सब इन विधि निषेध को नहीं कर सकते, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित सिमरणे न काल, उस नाम को जप करने के लिए ना तो कोई नियम है और ना ही स्मरण करने का कोई काल है। आप किसी भी समय किसी भी स्थान में कहीं पर भी जप कर सकते हो, कोई विधि नहीं है कि आपको एकांत में जाना पड़ेगा, कोई विधि नहीं है आप ऐसे स्थान में जाके एक एकांत विधिवत आसन बनाओ या प्रत्याहार करो, सांसों को रोको, सांसों को जीतो और मन को जीतो, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ नाम जप करना है, इतना सरल। क्योंकि हम जैसे यहाँ पर कलयुग के लोगों को ये सब विधि बताई जाएगी ना, तो वो करने की तो बात छोड़ो, सोचेंगे भी नहीं। आज हम अगर किसी को बोलते हैं कि महामंत्र जप करने की कोई विधि नहीं है, आप कहीं पर भी जप कर सकते हो, ट्रेन में खड़े खड़े जप कर सकते हो, स्कूल की वैन में जाते जाते जप कर सकते हो, घर में जप कर सकते हो, पार्क में जप कर सकते हो, चलते चलते बैठे बैठे खड़े खड़े कहीं पर भी जप कर सकते हो, फिर भी वो नाम जप नहीं कर रहे, तो क्या आज कलयुग का जीव इतनी कठिन विधि को पालन कर सकेगा? नहीं। लेकिन वास्तव में यदि कोई सरल विधि है, क्योंकि नाम जप करना बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रह्म बीजम अविस्मरण, यदि भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए नाम जप करना बहुत आवश्यक है। और कलयुग के प्राणियों के लिए महामंत्र को रिकमेंड किया गया है, क्योंकि इसमें इतनी सारी विधि नहीं है और ये बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला है, बहुत ही जल्दी भगवान के साथ हमारा संपर्क होता है, बहुत ये नंबर डायल करते हैं और भगवान के साथ बातचीत होने लगती है। इसलिए सदैव हृदय से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना है। एक न एक क्षण तो मृत्यु आएगी, और उस समय यदि मुख से ये नाम निकल रहा है तो हमारा जीवन सक्सेस हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए ये प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।